नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, महिलाएं देश को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में काम कर रही है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम में कहा, युवा सिर्फ रोजगार खोजने वाला नहीं बल्कि देश के आर्थिक विकास में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नई दिल्ली में कल से भारत जनजाति महोत्सव 2026 का शुभारंभ होगा। इसमें आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और उद्यमशीलता का प्रदर्शन होगा। दिल्ली पुलिस ने कल्याणपुरी के राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में छात्रों के सुरक्षा, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज हरिनगर स्थित निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स में आयोजित नारी उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है और देश को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रही है। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज निर्मल छाया परिसर का दौरा कर महिलाओं और बच्चों के लिए हो रहे सशक्तिकरण प्रयासों का जायजा लिया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने आफ्टर केयर होम फॉर वुमेन, बालिका गृह और बाल निकेतन का दौरा कर यह सुनिश्चित किया कि वहां रहने वाली महिलाओं और बच्चों को उच्च गुणवत्ता की देखभाल, सुरक्षा और सुविधाएं मिल रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों से संवाद कर उन्हें स्कूल बैग और आवश्यक सामग्री वितरित की, माताओं को स्वास्थ्य किट दी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्पण और सेवा भावना को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई अहम योजनाओं की भी शुरुआत की। बच्चों से जुड़े कामकाज को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए बाल केंद्रित प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, बच्चों को सुरक्षित और अच्छा माहौल देने और कमजोर वर्गों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू आज नई दिल्ली में आयोजित नैसकॉम वैश्विक सम्मेलन 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र निर्माण में प्रौद्योगिकी की भूमिका विषय पर भाषण दिया। अपने संबोधन में श्री संधू ने समावेशी और भविष्य के लिए तैयार भारत के निर्माण में नवाचार, डिजिटल अवसंरचना और जिम्मेदार प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली पुलिस की आयुक्त और विशेष पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस के प्रयासों और चुनौतियों की सराहना की और उन्हें पुलिस कार्रवाई को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उपराज्यपाल ने कहा कि इसका उद्देश्य दिल्ली को सुरक्षित और संरक्षित बनाए रखना है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू को एक औपचारिक पत्र लिखा। इस पत्र में श्री गुप्ता ने दिल्ली के दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक लाइटों पर ऑडिबल ट्रैफिक सिग्नल लगाने का आग्रह किया। श्री गुप्ता ने कहा कि वर्तमान यातायात प्रणाली उन लोगों के लिए पूरी तरह अपर्याप्त है जो केवल दृश्य संकेतों पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि प्रमुख यातायात चौराहों पर ऑडिबल सिग्नल लगाना केवल एक तकनीकी सुधार नहीं बल्कि ये मानवीय गरिमा और सुरक्षा की दृष्टि से एक अनिवार्य आवश्यकता है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह आज जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय में आयोजित विकसित भारत युवा जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि आज का युवा केवल भविष्य का निर्माण नहीं कर रहा बल्कि वर्तमान में परिवर्तन का सशक्त आधार भी है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं के विचार, उनकी मेहनत और दृष्टिकोण ही विकसित भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में तय करेंगे। उन्होंने मंत्री ने यह भी कहा कि युवा शक्ति के साथ मिलकर सरकार एक सक्षम, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC की उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज चाणक्यपुरी के विनय मार्ग क्षेत्र में 24 घंटे निरंतर स्वच्छ जल आपूर्ति परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चहल ने बताया कि इस परियोजना के तहत विनय मार्ग बूस्टिंग स्टेशन पर आधुनिक मोटर पंप सेट लगाए जाएंगे तथा जल आपूर्ति को बेहतर और निर्बाध बनाए रखने के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए 1,48,00,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है जिसे लगभग 5 माह में पूर्ण किया जाएगा। श्री चहल ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करना और पूरे क्षेत्र में एक आधुनिक जल आपूर्ति प्रणाली लागू करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मुलाकात का उद्देश्य दिल्ली के समावेशी विकास और जनसेवा के प्रति सरकार के साझा संकल्प को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन के बीच निरंतर संवाद और समन्वय ही राज्य की प्रगति और सुशासन का सशक्त आधार है। इस अवसर पर जनहित की प्रमुख योजनाओं और दिल्ली को आधुनिक और विश्व स्तरीय राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए साझा दृष्टिकोण पर विस्तृत चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना के अंतर्गत बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाला पौष्टिक भोजन देश की मानव पूंजी में एक महत्वपूर्ण निवेश है। नई दिल्ली में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू ने बच्चों को राष्ट्र के जनसांख्यिकी लाभांश का आधार बताते हुए कहा कि वे आने वाले वर्षों में भारत की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कई अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि पीएम पोषण योजना के परिणाम स्वरूप बच्चों के स्कूलों में नामांकन उपस्थिति और स्कूल में बने रहने की दर में वृद्धि है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एनसीबी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के सपने को उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ा रही है। एनसीबी को देश के युवाओं को नशे से बचाने के लिए समर्पित एक प्रमुख एजेंसी बताते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके समर्पण और देशभक्ति को सलाम करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि विक्रेताओं को उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए और तय मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में पोषण भारत 2026 कार्यक्रम में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एक समर्पित मंत्रालय का गठन सरकार के इस संबंध में प्राथमिकता को दर्शाता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत हरित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जरूरी है। आज नई दिल्ली में आयोजित 10वें सस्टेनेबल बिजनेस फ्यूचर समिट को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश का हरित अवसंरचना का निर्माण निर्बाध होना चाहिए और ऊर्जा आधारित नवाचारों द्वारा संचालित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा, सतत शहरी नियोजन और स्मार्ट संसाधन प्रबंधन में उभरती प्रौद्योगिकियां कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हुए देश की अवसंरचना को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्री सिंह ने कहा कि विश्व अपनी आर्थिक संरचना में एक बड़ा प्रतिमान देख रहा है जो पारंपरिक विनिर्माण से आगे बढ़कर पुनर्योजी, पुनर्चक्रण और सतत प्रक्रियाओं की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी और प्रासंगिक बने रहने के लिए भारत को वैश्विक रणनीतियों, प्राथमिकताओं और मानकों के साथ तालमेल बिठाना होगा। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री सूद ने युवाओं को देश के भविष्य का निर्माता बताते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार खेलों के विकास, युवा सहभागिता, संवाद के अवसरों और नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। श्री सूद ने माई भारत पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पहल युवाओं में स्वयं सेवा और राष्ट्र निर्माण की भावना को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 में दिल्ली के लगभग 45,000 छात्रों की भागीदारी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि ये इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली का युवा केवल रोजगार खोजने वाला नहीं बल्कि देश की आर्थिक दिशा को समझने और उसमें सक्रिय भागीदारी निभाने वाला एक जिम्मेदार नागरिक भी है। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिवी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर अलीमोव के साथ सातवीं भारत रूस संयुक्त राष्ट्र परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया है कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक और जहाज सुरक्षित हैं। श्री सिन्हा ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी।
हमारे सारे नाविक और जहाज सुरक्षित हैं गल्फ रीजन में। पिछले 24 घंटों में 161 भारतीय नाविकों को गल्फ रीजन में साइन ऑफ के बाद रिपैट्रिएट करके भारत वापस लाया गया है। ये काम हमारी एम्बेसीज और मिशंस के द्वारा कोऑर्डिनेशन से किया गया। एलपीजी कैरियर दूसरा नंदा देवी रात में करीब 2:30 बजे वो कांडला पे पहुंचा और अब दोनों ही एलपीजी कैरियर से शिवालिक और नंदा देवी से कार्गो का डिस्चार्ज हो रहा है। मल्टीपल डिस्चार्जेस है। नंदा देवी का डिस्चार्ज शिप टू शिप है, फ्रॉम मदर शिप टू डॉटर शिप, वो अभी चल रहा है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है, हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर काम कर रही हैं, रिटेल आउटलेट्स पर कोई शॉर्टेज नहीं है, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नेचुरल गैस के संबंध में भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि जो भी कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स हैं अगर वो पीएनजी पर शिफ्ट हो तो अच्छा होगा। इसी दिशा में भारत सरकार भी प्रयासरत है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण ईकेवाईसी केवल उन ग्राहकों के लिए आवश्यक है जिनका अभी तक प्रमाणीकरण नहीं हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये कोई नया निर्देश नहीं है बल्कि ये सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिनके अंतर्गत अधिक से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारत जनजाति महोत्सव 2026 कल से राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हो रहा है। इस महोत्सव में आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और उद्यमशीलता का प्रदर्शन होगा। इसका आयोजन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा सुंदर नर्सरी में किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम इसका उद्घाटन करेंगे। ये महोत्सव 30 मार्च तक चलेगा। इसमें देश भर के 78 वन धन विकास केंद्रों के 200 से अधिक स्टॉल और 300 से अधिक आदिवासी कारीगर शामिल होंगे। दिल्ली की सामुदायिक पुलिस इकाई ने आज कल्याणपुरी स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं में जागरूकता, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को विकसित करना था। कार्यक्रम में गुड टच, बैड टच, पॉक्सो अधिनियम, बालिकाओं के सशक्तिकरण और मानव तस्करी की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। महिला पुलिस अधिकारी ने छात्राओं को व्यक्तिगत सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने के महत्व के प्रति जागरूक किया। राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, महिलाएं देश को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के प्रति दिशा में काम कर रही है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम में कहा, युवा रोज सिर्फ रोजगार खोजने वाले नहीं बल्कि देश के आर्थिक विकास में जिम्मेदार निभा रहे हैं। नई दिल्ली में कल से भारत जनजाति महोत्सव 2026 का शुभारंभ होगा। दिल्ली पुलिस ने कल्याणपुरी के राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में छात्राओं के लिए सुरक्षा, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।